अनुकूलता के बीच के ना राग अप्रतिकूलता में द्वेष, अनुकूलता में प्रीति, राग अप्रतिकूलता में द्वेष, अनुकूलता के मां हरत और प्रतिकूलता के मां शोक चिंता भय। तो अनुकूल और प्रतिकूल ये वृत्ति अठारहवें से बस काम बन गई। स्त्री जो है पति के अनुकूल बन जा रहे, पति की छाया की माफक बन जा रहे, उस स्त्री का अनुभव कभी बन। लड़का जो है अपने माता पिता के अनुकूल हो जाए तो माता पिता का भक्त, भगवान का भक्त भगवान के अनुकूल हो जाए तो सच्चा भक्त, किसी का नाम भक्ति। तो अपने से होने वाली जो क्रिया वो मालिक के अनुकूल, मालिक के हुक्म की ना हो, और मालिक की सारी क्रिया सुन देती उसमें मन समझ अनुकूलता प्रतिकूलता को भेद से उठा दे। मैं आपको एक नई बात बताई, आकर होने वाली कोई घटना है उसमें भी अनुकूलता प्रतिकूलता की वृत्ति में अटा दे, और अपने द्वारा होने वाली जो क्रिया है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता अटा दे। सिर्फ विषयों का अनुभव करो, आपका उद्धार तुरंत एक प्रकार से हो सकता है। विषयों के भोग भोगते हुए, शरीर के द्वारा कर्म करते हुए और जो कुछ आकर प्राप्त होते हुए सबके विषय में एक ही बात है, अनुकूलता प्रतिकूलता अभाव। ये तो ज्ञान योग है और ये भक्ति योग है और ये कर्म योग। ज्ञान योग का मतलब क्या है? एक परमात्मा के साथ दूसरी वस्तु नहीं, एक ब्रह्म विश्वनाथ एक ब्रह्म के साथ दूसरी वस्तु नहीं, एक ब्रह्म ऐसा भाव हो जाता है तो फिर मैंने अनुकूल क्या प्रतिकूल, अनुकूल हो तो उसमें राग हो और प्रतिकूल तो उसमें द्वेष हो। ये ऐसे ज्ञान जो ऐसे ज्ञान का सिद्धांत है, ज्ञान के सिद्धांत में एक सत्यचितान घन बुद्ध के साथ दूसरी वस्तु नहीं, यह बात दीजिए हो जाए, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं। तो अनुकूल अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, ये सब हटे। जब राग हो तो कामना हो, कामना भी नहीं, कामना हो तो फिर क्रोध हो, क्रोध हाल कहां से जब कामना ही नहीं, क्रोध हो तो फिर मल हो। तो काम क्रोध लोग मल ये सब एक जल क्या है, सनातन जाते काम काम क्रोध भी जाते क्रोधा भक्ति संयोग है। समझो आसक्ति है, राग है, उससे कामना क्रोध मल ये सब पैदा होते हैं। आसक्ति किसमें है? मन के अनुकूल में, मन के अनुकूल में आसक्ति। और अनुकूल हो तो फिर आसक्ति में कोई जलेंगी तो गुंजाती, अनुकूल तो हर्ष है। जो एक प्रकार से अनुकूलता की देर उखार दी तो फिर हर्ष के तो संसारिक पदार्थ में देकर के उम्र हर्ष है वो खत्म। इसी प्रकार से प्रतिकूल, प्रतिकूल कोई हो तो उसके अंदर भय क्रोध ये हो, प्रतिकूलता के मैं द्वेष। एक ही ब्रह्म है ना, अनुकूलता प्रतिकूलता को अभाव है तो क्या एक संता है, सम ब्रह्म से सम है। तस्मात ब्रह्मणी के सिता उन पुरुषों ने उन पुरुषों के द्वारा संसार यहीं जिताया, जाने वे जीवन पुरुष है कौन कि जिनका मन क्षमता महसूस है, क्यों ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए जिनकी क्षमता में स्थिति है उनकी ब्रह्म स्थिति है। तो ब्रह्म स्थिति का यह लक्षण बताया, उसमें क्षमता है, विषमता नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो बाहर है, बड़ी राग द्वेष है, विषमता भक्ति की बात ख्याल करो, क्रिया जो करो जिसमें अपने इच्छा नहीं, कामना नहीं, आसक्ति नहीं, यह बात ये है नहीं। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा, भगवान की अनुकूलता में अपनी अनुकूलता, भगवान जो भी कुछ कहते हैं ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करना, भगवान ने जो कुछ गीता में लिखा वही करना, उसे भी भगवान करने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं और करवाते भी हमारे से भगवान, तो हम क्या रहे, हम मैं तो करता रहे कुछ भी नहीं। हमारे द्वारा जो चेष्टा होती है वो भगवान ही हमारे से करवा लेते हैं, ना बैठ के अंदर बैठ के कि भगवान से चेष्टा करवा दे, करता होकर करें भगवान के हुक्म से, तो भगवान का हुक्म मान करके हम करते हैं तो वो क्रिया भगवान ने की, वो तो भगवान की क्रिया हमारी तो नहीं। मैं आपका हुक्म मान कर कोई काम करता हूँ तो आप करवा रहे हैं तो आपका ही काम है। इस प्रकार से जो कुछ करना भगवान की आज्ञा के अनुसार करना, ये करना भी एक प्रकार से कर्तापन होते हुए भी मैं कर्तापन का अभिमान नहीं है, तो वो कर्म अकर्म है। ज्ञान योग में यही बात, ज्ञान योग में वन कहते इस अभिमान के प्रभाव बुद्धि लिपति हत्या पिछय मान लू काम मैं हूं तीन अनुबद्धति, जिसमें मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, वह पाप करते लिपायमान नहीं है, उसकी बुद्धि से लिपायमान नहीं है, सारे लोगों को मार करके विवाह को नहीं मारता और मैं पार से बनता है, तो कर्म योग सत्या कर्म फला संयम प्रिय कमल में भी प्रवृत्ति करो ये जो पहला जो श्लोक कहा था ये जो बताया जाता है ये क्या भाव क्या है कि जिस पुरुष ने कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग कर दिया, यानी इच्छाकार कामनाकार आसक्ति का त्याग कर दिया और ये तो परमात्मा के ध्यान में प्रकट है, संसार के आश्रय से रहित है, ऐसा पुरुष करता वह भी कुछ भी नहीं करता, फल क्या कर्म फलासन में आते कर्म में भी प्रवृत्ति कर्म के मैं प्रवृत्ति आदि जीतता है, नहीं ये तुम चिद करो कि वो कुछ भी नहीं करती, तो कर्मयोग के भी ज्ञात हो और कर्मयोग के कई आगे में क्या लक्षण छठी जाके चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं जो विषय है कर्मों का फल उसमें आशक होता है, माने आसक्ति नहीं होती तो कामना कहा सब तो आसक्ति से कामना से रहित है, तो क्या कहते कि वह सब संकल्पों का त्यागी युगारूढ़ है, उसमें कोई संकल्प भी नहीं है, संकल्प तो आसक्ति है तब है, तो आसक्ति नहीं है तो संकल्प कहता कि युगारूढ़ कहलाता है, तो युगारूढ़ के कैसे लक्षण होते हैं जीता आत्मन प्रस्थान तत्व, जीता आत्मन प्रस्थान तत्व परमात्मा समाहित है, परमात्मा जिसमें आत्मा के जितने मन बुद्धि शरीर इंद्रियां सब जिसके काबू है,
और ये परमात्मा जो मैं समझ प्रकाश से सीखो और ज्ञान विज्ञान के सतात्मा छोटे से विचित्र मिले और ज्ञान और विज्ञान के बीच में जो की आत्मा एकदम प्रकट है ऐसा जो पुरुष है छोटे का अधिक ही है और ये तो सीखे के लिए ये भी संलोकतात्म काम समय ऐसे युग को दूध कहते हैं जो पत्र में मट्टी में सोना मत में समान सब में समान पत्थर मट्टी सोने में समान ये पदार्थ में समता दिख रही और ज्ञान मात्र समझो कि संसार में समता मनुष्य में समता सूर्य में मिथिला विवासी में मदस्त देश बंधु सुधु सुपी सपाती सुबुद्धि विशेष थे सूर्य जो है मित्र जो है बैरी जो है संघ की जैसी जो है उदासीन है मदस्थ है पापी है पुण्यात्मा है सब में जिनकी स्तंभ बुद्धि श्रेष्ठ है तो यहाँ भी वो स्तंभ बुद्धि आ गई। निष्काम कर्म योग के साधन करने वाला जो योगी सिद्ध पुरुष है उसमें ये बात प्रभावित आ जाती है। भक्ति से मार्ग में चलने वाला जो भगवान का आनंद भक्त है उसमें ये लक्षण आ जाते हैं। निर्गुण निराकार की उपासना करने से जो गुणातीत पुरुष है उसमें भी यही बात आ जाती कौन बात आ जाती हम दुख है सुख है स्वस्थ है संघोष्टा संकांचन है तुल प्रिया प्रियोधी है तुल निंदा तुम सुधी मान अपमान युक्ति तुल्यो मित्र पक्ष परिवार प्रीता जी गुणातीत क्या गुणातीत गुणातीत कौन है कि सुख और दुख में जो तुम है मिट्टी सोने और पत्थर में जो समय है मन के अनुकूल प्रिय मन के प्रतिकूल अप्रिय उन दोनों में जो समय है ऐसा जो धीर जो ज्ञानी पुरुष जो है जो मान अपमान में समय है निंदा स्तुति में समय है और मित्र और बड़ी के पक्ष में समय है अब सब आरम्भ में कर्ता बने को जिसके मन अभिमान नहीं है ऐसा गुणा तीर्थ ऐसा पुरुष गुणा तीर्थ कहलाता है और भक्त में देख लो भक्ति मान में प्रियो न रहो ऐसा भक्ति मान पुरुष मुझको प्यारा कैसा कि जो शत्रु मित्र में समय मान अपमान में समय सिद्धि की प्राप्ति में समय दैवी और मित्र की पक्ष में जो समय और निंदा स्तुति के में जो समय और देह में अभिमान से रहित है ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है। तो गीता की 12वीं अध्याय के 18-19 के श्लोक में भक्तिमान पुरुष के नाम से वो भाव शब्दों को चाहे किंचित फर्क रूप में भाव हुई गीता की 14वें अध्याय के 24 और 25 के श्लोक के बीच के मां गुणातीत पुरुष के लक्षणों के बीच में वो सर्वभाव इसी प्रकार से कर्मयोग के द्वारा प्राप्त हुआ जो पुरुष योगी उस योगी के लक्षण के मां गीता की 6वें अध्याय के 8 और 9 के श्लोक के मां वही है भाव क्या सब मतम समता का मतलब राजद्वेष कर रही राजद्वेष होने का मुख्य कारण की अनुकूल और प्रतिकूल तो अनुकूलता प्रतिकूलता को अभाव सब में दिख रहा है तो अनन भक्ति के माँ भी साधन काल के माँ तुम जो की राजद्वेष के त्याग की बात कही कर्मयोग के बीच के माँ राजद्वेष के त्याग की बात कही ज्ञान योग के बीच के माँ राजद्वेष के त्याग की बात कही अनुकूलता के मां राज प्रतिकूलता के मां द्वेष खुद छाड़ करके देखो गीता की दूसरी अध्याय के मां कर्म योग के बीच के मां एक प्रकार से गीता की दूसरी अध्याय के 64 और 65 के श्लोक के बीच में राग द्वेष के त्याग के द्वारा कर्मयोग के लिए परमात्मा के स्वरूप में स्थिति बतलाई स्थित प्रति रक्षण के मैं यह बात बतलाई राग द्वेष वृत्ति से विषयांग्रेष्टम आत्म आत्म विषय विषय आत्मा प्रसाद में दिखती प्रसाद स्वर दुखाना नहाने स्वर जाते प्रसन्न के प्रयास बुद्धि परिवर्तित मन और इंद्रिया जिसके बस में ऐसा राग द्वेष रहित हुआ पुरुष है इंद्रियों के विषय में विपिन करता है इससे उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है प्रसंग चीज के सारे विघ्नों का नाश हो जाता है उसके चित्त में प्रसन्नता हो जाती है अचित की प्रसन्नता से उसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल सदा के वास्ते शीघ्र स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार से राग द्वेष रहित क्रिया करने से भगवान उसको अनंत भक्ति के नाम से कहा मत कर्म क्रिय मत कर्मो मत भक्त संवर्जित हो पांडव हे पांडव जो मेरे वास्ते कर्म करे और जो मेरी स्थान है जो मेरा हर्द है तो संसार के न आसक्ति से रहित है वह भाव से द्वेष भाव से जो रहित है वो मेरे को प्राप्त होना है। तो वहां भी राग द्वेष का अभाव दिख रहा और ज्ञान की जो परा निष्ठा बतराई गीता की थार अध्याय के वहां इक्यावन से इस लोक से लेकर के पिचावन तक वहां वहां भी यही बात दिख रहा है। दया विशुद्ध दयायुक्त आत्मानंद नियमित सदा दिन विश्वास तत्व राग द्वेषो विदस्त अठारहवीं जाके इक्यावन की विशुद्ध बुद्धि करके जो युक्त है और सात्विक दृष्टि के द्वारा जिसने अपने मन बुद्धि इंद्रिया को भस्म कर दिया है और संसारिक जो विषय भूख का त्याग करके उनके मन जो राग द्वेष का भी जिसने त्याग कर दिया ऐसा ज्ञान निष्ठा वाला जो पुरुष है जिसे बुद्धि आगे जाकर भगवान के विश्व प्रधानमंत्र मेरे में प्रवेश कर जाता है अंतिम फल ये दिख रहा है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि राग द्वेष को त्याग सबमयी कर्मों से अनुकूलता में राग प्रतिकूलता में द्वेष बुद्धि होती है अनुकूलता प्रतिकूलता जिसके हृदय में नहीं है वो भगवान का सच्चा है। अनन शरण किसी को नाम है और अनन भक्ति किसी को नाम कर्म योग के नाम भी यही बात है सांख्य योग में भी यही बात है भक्ति योग में सब में यही बात है। इस बात को समझ कर सके समझे कि जो अति पति के अनुकूल है और अपनी इच्छा को सब था जिसने त्याग कर दी वो पति भक्ता जो लड़का अपने अपनी इच्छा को त्याग करके और माता पिता के अनुकूल है उसका माता पिता का भक्त और जो अपनी इच्छा को त्याग करके गुरु के कहे में जो करता है तो गुरु का भक्त। इसी प्रकार से थी जो अपनी इच्छा का त्याग कर करके और भगवान की शरण हो जाता है भगवान के अनुकूल हो जाता है भगवान का भक्त इच्छा का अपनी इच्छा का सब में त्याग अपनी जो इच्छा तो ये यूं होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए ये दुष्ट है सब था अपनी इच्छा का त्याग कर दिया बस ये ही मुक्त है इच्छा का फिर का त्याग करना और इच्छा का त्याग करके उसके बीच के में जो कथा पढ़े के अभिमान का भी त्याग कर देना निष्काम कर्म किसको ना है कि जिसमें कामना नहीं हो और जिसमें कामना है पुत्र की धन की किसी चीज की भी कामना है उसको कोई निष्काम निष्काम कर्म ही कहेगा कोई भी नहीं कहे। निष्काम का मतलब ही है कि कामना का अभाव है उसकी क्रिया निष्काम क्रिया ये कर्म निष्काम है निष्काम होने से परमात्मा की प्राप्ति हुई है।
निष्काम का मतलब यह है कि अपनी इच्छा नहीं कि ये वो एक सिंधु की स्त्री है पतिव्रता तो पति की इच्छा के अनुकूल, लड़का है तो माता की पिता की इच्छा के अनुकूल, लड़का है तो भगवान की इच्छा के अनुकूल, महात्मा का अनुयायी है तो महात्मा की इच्छा के अनुकूल, अरे शिष्य है तो गुरु की इच्छा के अनुकूल। बस बहुत ही सरल उपाय है, ऐसे कोई गुणवास्ता है नहीं है कि मर्द की इच्छा के अनुकूल, अपनी को इच्छा अपनी इच्छा के त्याग से मुक्ति है और कुछ भी आपको त्याग नहीं करना। बस ये जो एक प्रकार से हृदय में बात आती है कि ये तो अनुकूल ये प्रतिकूल, ये तो हमारे अनुकूल है कि ये हमारे प्रतिकूल, सारा बखेरा इससे पैदा होता अनुकूल के मां राज प्रतिकूलता में देश, अनुकूलता के मां हर्ष प्रतिकूलता में शोक, अनुकूलता के मां शोक प्रतिकूलता में दुख। बस समझो कि सारे अवगुण और सारे दुर्गुण सारे दुराचार उसके मां अपने आप लग जाते गुणा बुरा, तो अवगुणा की खंड बन जाता है, एक सिंधु की दोषों की खंड बन जाता है। इन सब बातों को ख्याल में रख करके मनुष्य को बस इतनी बात ध्यान कर ली है कि अनुकूलता प्रतिकूलता को एकदम जोर से उखाड़ डाल, अपने से होने वाली क्रिया में भी और पदार्थों में और आगे की कोई घटना प्राप्त हो उनमें और सारे प्राणियों में किसी भी प्राणी के विषय में समझो कि अपने विषमता नहीं होनी चाहिए, समता परमात्मा को स्वरूप है इसलिए सबके में समभाव होना चाहिए। ये सब से बढ़ करके विद्यार्थी में संपन्न है ब्राह्मणी गृहस्थी सुनीत के पंडिता संघर्षी हो, पंडित माने ज्ञानी, इन सब में संघर्षी होती है कि नहीं, विद्यार्थी में संपन्न ब्राह्मण में गौ में कुत्ते में हाथी में चंडाल में सबके विषय में अपने भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को देखते हैं सबके विषय में। तो विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण ये तो सात्विक सब में श्रेष्ठ मनुष्य और मनुष्य में श्रेष्ठ विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण तो परम सात्विक, विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण गरी मनुष्य के बाद पशुओं की बात है, तो पशुओं में गा तो गा जो है तो पशुओं में सात्विक है तो गा के नाते वो राष्ट्रीय सात्विक राशि दोनों है, जाति से पशु होने से राष्ट्र और वास्तु के बीच के वहां पशुओं में वो सात्विक विद्यादी कंपनी ब्राह्मी गवी हस्ती 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 जमाना हाथी हाथी राशि पशुओं में भी राष्ट्रीय और अश्वारी के योग होने से भी राष्ट्र तो विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण के परम सात्विक और उसके बाद दो नंबर के बीच के मां सात्विकता में पशु पुणों की सेवा के राज और आगे फिर हो गया तो जिन्ह तुल राज की हाथी जो है फिर आगे न बढ़े तुम्हें के सपा के सहो पुत्र और चंदा तो मनुष्यों के बीच में तो सिर के नीचे चंदा पशुओं में सुर से नीचे कुत्ता यह शांति इन सब जनों जिनका समभाव है श्रेष्ठ है और किसी में अनुकूल किसी में प्रतिकूल विषम भाव तो समभाव से श्रेष्ठ और समता से परमात्मा को स्वरूप है। इतना कहते यू के जो किसी में समभाव होना चाहिए चाहे यू के जो सिर में परमात्म बुद्धि होनी चाहिए परमात्मा को देखना चाहिए तो सब हम परमात्मा को देखें तो वही बात और सब में सम भाव हो जाए तो वही बात तुम ऐसे परमात्मा ही है एक ही चीज। किसी भी सिद्धांत को आप जाकर के देख इन सब बातों को ख्याल में ला करके थे और एक प्रकार से
अपने किसी की शर्म होना चाहिए बहुत ही उत्तम उपाय है। स्त्री अपना पति की शर्म हो जाए, लड़का माता पिता की शर्म हो जाए, भक्त भगवान की शर्म हो जाए, जिज्ञासु महात्मा की शरण हो जाए और शिष्य अपने गुरु की शरण हो जाए और सेवक मालिक की शरण हो जाए तो सब को उद्धार। शरण को बता है बस उनके अनुकूल, अपन को इच्छा नहीं, मालिक राजी हो जी हाँ हाँ ना ना ना, अपना कुछ नहीं। इतना सरल उपाय है, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने जो ये बात बताई है स्त्री जी पाति में धन धारण करने से मुक्ति हो जाए ठीक है, युक्ति समय लड़का माता पिता की सेवा करने से मुक्त हो जाए। दृष्टान चाहते हैं शास्त्रों में उसका बातें आती एक प्रकार से मूक चंदा माता पिता की सेवा करके भगवान के परम धाम को चला गया, ये बात परम पुराण के माध्यम। इसी प्रकार से सुहानाओं की स्त्री और करकल देश की स्त्री जिसका नाम शुक्ला पातिव धर्म के प्रभाव से मुक्त हुई, अत्रि ऋषि के स्त्री अनुसुया पातिव धर्म पातिव धर्म के धारण करने से संसार के मन पतिव्रता और सबसे बढ़कर हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनके आदर के अंश रूप से अवतार ऐसी संधि की एक प्रकार से गुरु की आज्ञा मानने से जैसे जायला का पुत्र सत्कर्म का उद्धार हो गया।